शान को अभी विहान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उसकी आंखों के सामने होता तो अपनी क्रोधाग्नि से उसको इसी वक्त जलाकर भस्म कर देता। अजीब बात ये थी, इस फोटो को देखने के बाद उसके जहन में आरवी को लेकर कोई ख्याल नहीं आया था। उसकी निगाहें तो बस उस फोटो में दिख रहे विहान को घूरे जा रही थी और उसका सारा गुस्सा उसी के लिए था। शान कुछ देर तक यूं ही उस फोटो को घूरता रहा, फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने गुस्से को काबू किया और विहान को फ़ोन लगा दिया। कुछ सेकंड बाद ही दूसरी तरफ से विहान ने कॉल रिसीव करते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मिस्टर शांतनु मल्होत्रा, कहा था ना कि मुझे दोबारा तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सरप्राइज़ देखने के बाद तुम खुद मुझे फ़ोन करोगे। सी, मेरे कॉल काटने के बाद 5 मिनट के अंदर तुमने खुद मुझे फ़ोन किया है। वैसे मैं तुमसे पूछना तो भूल ही गया, मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा तुम्हें? जैसे जैसे विहान बोल रहा था, शान का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ये वही जानता था कि किस तरह वो खुद को काबू कर रहा था, वरना अगर उसका बस चलता तो अभी फ़ोन में घुसकर ही उसको इतना मारता कि आगे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रह पाता। लेकिन अभी उसको शांत रहना था और ये उसकी मजबूरी थी, जिसकी वजह थी आरवी। वो गुस्से में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिसकी वजह से आगे चलकर आरवी पर कोई भी प्रॉब्लम आए। शान ने किसी तरह अपने गुस्से को काबू करते हुए सख्त लहजे में कहा, क्या मतलब हुआ उस फोटो को भेजने का? चाहते क्या हो तुम? विहान के होठों पर एविल मुस्कान उभरी। ये हुई ना बात, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। बहुत बड़े आदमी हो तो टाइम की कमी रहती होगी, मुझे भी सीधे सीधे बात करना ही पसंद है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ ताकि तुम्हें उस लड़की का असली चेहरा दिखा सकूँ जिसे तुम दुनिया के सामने अपनी बीवी बनाए घूम रहे हो। वैसे तुमने तो कमाल ही कर दिया, जिस लड़की से मिले तुम्हें मुश्किल से कुछ 6 महीने हुए, उससे सालों पहले तुम्हारी शादी हुई, इतना बड़ा झूठ कह दिया, वो भी मीडिया के सामने। विहान की बात सुनकर शान ने अब गुस्से में कहा, इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप बताओ कि क्या चाहते हो तुम और उस फोटो का क्या मतलब हुआ। मैं बता चुका हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। अभी जो मैंने तुम्हें भेजा वो तो बस ट्रेलर है, मेरे पास पूरी पिक्चर है। अगर देखना चाहो और अपनी सो कॉल्ड बीवी का असली चेहरा देखने की ख्वाहिश हो तो आज रात 8 बजे मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ पहुँच जाना, बाकी की बातें मिलकर करेंगे, और अगर नहीं आए तो नुकसान तुम्हारा ही है। आई विल वेट फॉर यू। विहान ने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया, फिर फ़ोन को अपने हाथ में घुमाते हुए आंखों में शैतानी चमक भरते हुए बोला, मिस आरवी ठाकुर, नो एक्चुअली मिसेज आरवी मल्होत्रा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नाम के पीछे किसका सरनेम लगा है, तुम किसकी बेटी हो और किसकी वाइफ, मुझे किसी बात किसी सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं यहाँ नहीं था तो तुम्हें लगा होगा कि अब तुम्हारा मुझसे पीछा छूट गया है, पर स्वीट हार्ट, विहान बजाज से पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है। जब तक मैं खुद न चाहूँ कोई भी मुझसे दूर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं। मेरे एब्सेंस में बहुत दिन बिता लिए तुमने सुकून से, पर अब एक बार फिर तुम्हारा सुकून छीनने में आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, और अब तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनता हूँ। मुझे भुलाकर किसी और से शादी करके खुशी से अपनी इस नई ज़िंदगी जी रही हो ना तुम, पर तुम्हारी खुशी पर अब विहान नाम का ग्रहण लग चुका है। बस आज की रात और तुमसे तुम्हारी सभी खुशियाँ छिन जाएंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पति को दिखाने वाला हूँ, उसके बाद दुनिया का कोई आदमी तुम जैसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ नहीं रखेगा। तुम्हारा पति तो पहले ही गुस्से का तेज है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बस एक तीली लगाऊंगा और ऐसी आग भड़केगी जिसमें तुम्हारा ये नया रिश्ता, तुम्हारी खुशियाँ सब जलकर भस्म हो जाएंगी। तब तो तुम बच गई थी, पर इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। इस बार मैं ऐसा दाव चलने वाला हूँ कि तुम खुद मेरे पास आओगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारे उस पति ने तुम्हें पिछली बार मुझसे बचाया था ना, उसी के घर में रह रही हो ना तुम, पर बस कुछ घंटे और उसके बाद वो खुद तुम्हें घसीटते हुए धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालेगा, और फिर चलूंगा मैं अपना अगला दाव, और इसके साथ ही तुम मजबूर हो जाओगी मेरे पास आने के लिए। बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि विहान बजाज के साथ धोखेबाजी करने का क्या अंजाम होता है। वो हाल करूंगा तुम्हारा कि कोसोगी तुम उस पल को जब तुम्हारे दिल में मुझे धोखा देने का ख्याल आया था। बनोगी तो तुम मेरी ही, पर वो हश्र करूंगा तुम्हारा कि मेरे अलावा किसी के बारे में सोचने के भी काबिल नहीं रहोगी तुम। बस कुछ देर और तुम मेरी बाहों में होगी, और तब देखोगी तुम मेरी नफरत। विहान के लबों पर शैतानी हंसी खिल गई, आंखों में अजीब से भाव भर आए, लबों पर घिनौनी मुस्कान सजाते हुए स्क्रीन पर चमकती आरवी की तस्वीर को चूम लिया। दूसरी तरफ शान ने उसकी बात सुनकर फ़ोन को गुस्से में अपनी मुट्ठी में भेज लिया। उसके माथे की नसें तन चुकी थीं, ऐसा लगा जैसे वो किसी भी पल फट जाएंगी। उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया और विहान के भेजे एड्रेस को देखने के बाद आँखें बंद करके चेयर से सर टिकाकर बैठ गया। शादी के दिन विहान का आरवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना, उसके बाद जो बातें उसे आरवी और विहान के बारे में पता चली, विहान के धमकी भरे मैसेज और आरवी की व्याकुलता, सब एक एक करके उसको याद आने लगे और सबसे आखिरी में उसकी आंखों के सामने विहान की कुछ देर पहले भेजी तस्वीर घूम गई। इसके साथ ही उसके कानों में विहान की ट्रेलर और फिल्म वाली बात गूंज उठी और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उसने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसने झट से अपना फोन उठाकर उसमें वो फोटो देखी और एक बार फिर सब बातों के बारे में सोचने लगा। टूटी कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए वो आखिरी में इस पहेली को सुलझाने में कामयाब हो ही गया जो शादी के बाद से उसके दिमाग में तहलका मचाए हुए थी। जब से उसे आरवी और विहान के कॉलेज टाइम के बारे में सारी बातें पता चली थी, तभी से उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि कॉलेज टाइम में 3 साल तक लगातार विहान को रिजेक्ट करने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज खत्म होते ही उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उस वक्त अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला था, पर अब शायद उसकी तलाश खत्म हो गई थी। उसके सभी सवालों का जवाब इस वक्त उसकी आंखों के सामने मौजूद था। शान ने सब बातों के बारे में अच्छे से सोचने के बाद खुद से ही कहा, कुछ कुछ तो समझ गया हूँ, पर अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी है, वो भी उस कमीने विहान से मिलने से पहले। पर तुमसे अभी कुछ पूछ नहीं सकता, रश्मि तो साई की तरह तुम्हारे साथ रहती थी, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, तो अपनी जिंदगी से जुड़े इतने बड़े राज को तुमने उसे तो बताया ही होगा, या वो पहले से ही सब जानती होगी, और अभी एक वही इंसान है जो मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है। शान की रश्मि से कुछ खास बनती नहीं थी, अगर ये कहा जाए कि उनका 36 का आंकड़ा था तो कुछ गलत नहीं होगा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे और जब बात होती तो बात कम और बहस ज्यादा होती थी, मुंह से शब्दों की जगह आग के गोले बरसते थे। शान को वो जरा भी पसंद नहीं थी, पर बात जब आरवी की आई तो शान को 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगा और उसने रश्मि को कॉल कर दिया।
रश्मि जो अभी अभी अपने रूम में आई ही थी, उसने फोन बजने पर बुरा सा मुंह बनाया, फिर पॉकेट से फोन निकालकर अननोन नंबर देखकर कॉल को आंसर ही नहीं किया और फोन बेड पर पटक कर कबर्ड की तरफ बढ़ गई। रश्मि ने कॉल रिसीव नहीं किया तो शान ने दोबारा फोन लगाया और रश्मि जो कपड़े लेकर बाथरूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी, उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव उभर आए। उसने फोन उठाकर देखा, फिर वही पहले वाला नंबर देखकर फोन काटने को हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर काटते काटते रुक गई और कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगाते हुए शान को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही गुस्से में उस पर भड़क उठी। हेलो, कौन है? जो भी है, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो मतलब वो बिजी है या उसका अभी बात करने का मूड नहीं है, तो बार बार फोन करके उसको इरिटेट ना करो। एक बार फिर उसके बात करने के लहजे से शान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया, दूसरों की इंटेलिजेंस पर सवाल उठाने से पहले जरा खुद पर गौर करो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं कि अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है तो कोई इंपॉर्टेंट बात होगी? वैसे भी तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी तो नहीं कि कोई उसे सुनने के लिए तुम्हें फ़ोन करे, तो जाहिर सी बात है कि किसी काम से ही फ़ोन कर रहा होगा, वरना तुम्हारी तीखी आवाज़ सुनकर कोई अपने कानों से खून क्यों निकलवाना चाहेगा? शान का जवाब सुनकर रश्मि की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह हैरानी से खुल गया। खड़े खड़े बेचारे की इतनी बड़ी इंसल्ट हुई कि उसे एक्सेप्ट करने में ही कुछ सेकंड लग गए। जब उसको बात समझ आई तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, वो एकदम से भड़क उठी। हो कौन तुम और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी आवाज़ की इंसल्ट करने की? शांतनु मल्होत्रा बोल रहा हूँ मैं, और जिस लहजे में तुमने अपने बॉस से अभी अभी बात की है उसके बाद तो तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन लेनी चाहिए थी मुझे। मैंने तो फिर भी तुम्हारी तारीफ में कुछ शब्द ही कहे हैं जो बिल्कुल सच हैं। शान भी कहाँ कम था, उसने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। रश्मि ने जब उसका नाम सुना तो उसकी आंखें और भी फैल गई और अगले ही पल उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तो आवाज़ और बातें सुनकर पहले ही समझ जाना चाहिए था कि फ़ोन पर आप ही हैं, क्योंकि इतना बदतमीज़ इंसान जिसको एक लड़की से बात करने की भी तमीज़ ना हो, वो आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में एक आप ही हैं जिसका मानसिक संतुलन इतना हिला हुआ है। रश्मि काफ़ी गुस्से में थी और खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी, जिससे शान को साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसकी भिनभिनाने जैसी आवाज़ आ रही थी, जिससे वो और ज़्यादा खींच उठा और उस पर बरस पड़ा। ये क्या मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने लगी, जो बोलना है सामने बोलो, मन में मुझे गालियां देने की जरूरत नहीं है। शान की बात सुनकर रश्मि का भिनभिनाना बंद हो गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, ओ प्लीज, मैं कोई गाली वाली नहीं देती, क्योंकि आपके जैसे मैंने अपने मैनर्स बेचकर नहीं खाए हैं, और रही बात सामने बोलने की, तो मैं आपसे डरती नहीं हूँ, वो तो आपका लिहाज कर लेती हूँ कि कहीं अपने बारे में मेरे शुभ विचार जानकर आपको सदमा वदमा लग गया तो नुकसान तो मेरी दोस्त का होगा ना। रश्मि की बातें ही काफ़ी थी शान के गुस्से को भड़काने के लिए। दोनों का नेचर एक सा था, तभी उनकी पट्टी नहीं थी और आमने सामने आते ही जंग छिड़ जाती थी। इस बार भी वही हुआ, रश्मि और शान की कभी ना खत्म होने वाली बातों की जंग छिड़ चुकी थी और इस बार आगाज़ भयंकर था। शायद ये जंग अभी यूं ही कंटिन्यू रहती, पर आरवी का जिक्र होते ही शान के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। रश्मि की बातों में उलझकर वो भूल ही गया था कि आखिर उसने उसे फ़ोन किया क्यों था, पर अब उसे याद आ गया था, इसलिए इस बहस को और आगे ना बढ़ाते हुए अब उसने गहरी सांस छोड़ते हुए थोड़ा आराम से कहा, लुक रश्मि, मैंने तुमसे बहस करने के लिए फोन नहीं किया है और ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है। शान ने अभी इतना कहा ही था कि रश्मि ने उसकी बात काटते हुए तुनकते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा गई थी आपको फोन करने? आपने ही मुझे फोन करके अपनी सड़ी हुई बातों से मेरा मूड खराब कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फालतू टाइम मेरे पास भी नहीं है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है आप जैसे बदतमीज और सिरफिरे आदमी से बात करने में, जिसे लड़कियों से बात करने का तरीका तक नहीं पता। और मैं आपसे उम्मीद ही क्या करूँ, जब आपकी नज़रों में आपकी अपनी पत्नी की ही कोई इज्जत नहीं, जब आप अपनी वाइफ की इज्जत का सारी दुनिया के सामने तमाशा बना सकते हैं, तो मैं तो आपकी कुछ लगती भी नहीं हूँ, भला अपने लिए आपसे इज्जत की उम्मीद मैं कर भी कैसे सकती हूँ? रश्मि ने एक बार फिर शान के गुस्से को भड़का दिया था, पर जैसे ही उसने आरवी का जिक्र किया, शान के लबों पर ताला लग गया। वो पलटकर कोई जवाब देने की हिम्मत ही न कर सका। रश्मि ने इतने दिनों से जो उसके मन में भड़ास थी, उसे आखिर आज शान पर निकाल ही लिया था और उसकी बात ने शान को निशब्द कर दिया था। रश्मि ने अनजाने में शान की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, जिसका दर्द और बेबसी शान के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। एक तरफ रश्मि थी, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में गुस्से के साथ साथ नाराजगी और दर्द उभरने लगा था, तो दूसरी तरफ शान था, जिसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के भाव मौजूद थे। रश्मि अपनी बात कहकर खामोश हो गई और शान वो पलटकर कुछ कह ही नहीं सका। कुछ पल उनके दरमियान अजीब सी खामोशी फैली रही, फिर आखिर में रश्मि ने ही अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बेरुखी से कहा, बोलिए, क्यों फोन किया है आपने मुझे? शान ने भी अब तक खुद को संभाल लिया था। उसने गंभीरता से कहा, कुछ जरूरी काम था तुमसे। उसका जवाब सुनकर रश्मि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अभी अभी आपने ही तो कहा था कि मेरी तीखी आवाज़ सुनकर लोगों के कानों से खून निकल जाते हैं, और मेरी तीखी आवाज़ सुनकर आपको अपने कानों से खून निकलवाने का शौक तो नहीं पैदा हुआ होगा इस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि काम ही होगा। तो सीधे से काम बताइए, वो क्या है ना, आपकी तरह बिजनेसमैन नहीं हूँ पर काम मुझे भी बहुत होते हैं। अब तो रश्मि उसको दूध में भिगो भिगो कर जूते मार रही थी, उसी की कही बात को उस पर ही पलटकर उसे ही ताने पर ताने मारे जा रही थी, और शान की मजबूरी थी कि उसे उसकी बदतमीजी पर भी शांत रहना पड़ रहा था। रश्मि चुप हुई तो शान ने शांत लहजे में कहा, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है, आरवी की जिंदगी से जुड़ी बात है जो अभी मेरा जानना बहुत जरूरी है, और आरवी से मैं बात कर नहीं सकता, तो एक तुम ही हो जो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकती हो, क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हें उसकी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मालूम होगी, और इसलिए मुझे तुमसे अभी मिलना है। बोलो, कहाँ मिलोगी? शान काफी सीरियस था और उसकी बातें सुनकर अब रश्मि के भी चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने खामोशी से शान की बात सुनी, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बात आपको जाननी है वो मुझे पता होगी, और अगर पता हुई भी तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी तब सब आपकी और आरवी का रिश्ता लगभग टूट ही चुका है। सॉरी सर, पर मैं अपनी दोस्त के सीक्रेट्स लीक करके उसको चीट नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। टू बी कंटिन्यूड।